सरस्वती नमस्त वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। मैं व्यात्मा हूँ, प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप प्रवचन निर्देशिका के चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम के प्रकरण को पढ़ रहे हैं और ये हमारा 7 नंबर का चैप्टर है। उसके अंदर पेज नंबर 124 से विषय की शुरुआत हुई है, जिसमें द्वादशांग मई जिनवाणी माता के वर्तमान में उपलब्ध अंश ज्ञान के रूप में चार अनुयोग दिए गए हैं कि चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी का वर्तमान में हमें स्वाध्याय करना चाहिए। उसी के अंदर सारे द्वादशांग का सार छिपा हुआ है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में जिनवाणी माता है। उसमें प्रथमानुयोग के माध्यम से आपने जाना कि इस धरती पर हुए महापुरुषों के चरित्र का आलंबन ले करके और हमें भी अपने चरित्र को, अपनी चर्या को और अपने जीवन को यथासंभव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करना है। तो सहज है कि उसके बाद हमारा प्रश्न उठता है कि हम कहाँ हैं और ये लोक किस प्रकार का है, हम किस कर्म के कारण कौन सी गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। बस इसी को बताने वाला करणानुयोग है और कुआचरण को, दुराचार को सदाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रेरणा देने वाले ग्रंथ चरणान योग के नाम से विभक्त जिनवाणी का सार बताते हैं। आपने जाना कि पंचम काल आज है और चतुर्थ काल में भी साधु और श्रावक दोनों ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहा करते थे और आज पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग पर गाड़ी चल रही है और उसमें भी श्रावक और साधु दोनों एक गाड़ी के दो पहिए बन करके चरणानुयोग को सार्थक कर रहे हैं। आपने इस अनुयोग के माध्यम से जाना कि पंचम काल के अंत तक सच्चे संत और सच्चे श्रावक दोनों ही होते रहेंगे। हमें बड़े से बड़ा नियम और छोटे से छोटा नियम भी पालन करके अपनी चर्या को सार्थक करना चाहिए। चरणानुयोग के ग्रंथ, चाहे वो मूलाचार हो, भगवती आराधना हो, अनगार धर्मामृत, आचार सार, चारित्र सार आदि ग्रंथों का अध्ययन संत जन करते हैं और आप सब रत्नकरण श्रावकाचार और 36 श्रावकाचारों का अध्ययन करके अपने श्रावक के व्रतों को, श्रावक के नियमों को पालन करें। इसके लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आवश्यक है। सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है, जिसके बारे में आपने पहले के अध्यायों में सुना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण वह चारों गतियों में हो सकता है और किन किन कारणों से होता है, ये सब जान करके जब सम्यक दर्शन को पालन कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, तो ज्ञान और चारित्र स्वयं ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको चारों अनुयोगों की सार्थकता भी बताती हूँ। पूज्य माता जी ने तो 68 ग्रंथों का सार भर दिया है, इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में और इस चैप्टर के अंदर जो इस 7 नंबर का चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर चारों अनुयोगों की सार्थकता बता करके तो ये ज्ञात हो ही जाता है, ये बतला ही दिया है उन्होंने कि जीवन के अंदर चारों प्रकार के अनुयोगों के, चाहे एक एक दो दो तीन तीन ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें ताकि अपना ज्ञान परिपक्व हो जाए। तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक एक अनुयोग को आत्मसात करें। एक बार की बात सुनो भाई, एक बच्चा माँ के संग चला, पथ में चलते चलते माँ ने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके चल रही है और उसके माध्यम से रास्ते में क्या क्या होता है उसको आपको जानना है। होता क्या है, कुछ दूर पहुंच कर बच्चा ठोकर खाता है, माँ की उंगली को छोड़ वहीं बच्चा रोने लग जाता है। माँ बोली कल तेरे भैया को चोट लगी, वो नहीं रोया, तू भी तो उसका भाई है, चल खेल खिलौना क्यों रोया। प्रथमानुयोग ऐसे आदर्शों को बतलाता सदा चला, पथ में चलते चलते माँ ने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। तो आप समझ गए, एक माँ और बच्चे के माध्यम से आप चारों अनुयोगों की बात समझ सकते हैं कि एक जगह चलते चलते कोई बच्चा ठोकर खाता है और माँ की उंगली उसके हाथ से छूट जाती है, वही बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चा जब रोने लगता है तो माँ क्या कहती है, देख बेटा कल तेरा भाई तो गिरा था, उसे भी तो चोट लगी थी, उसको भी चोट लगी थी लेकिन वो तो नहीं रोया था, तू क्यों रो रहा है, तू भी तो उसका भाई है। यानी कि उसने, उस माँ ने भाई का उदाहरण दे करके बताया कि जब वो नहीं रोया था तो तुझे भी नहीं रोना है, तू भी उसका भाई है। ये है प्रथमा नियोग कि हम उन आदर्शों को पढ़ें कि हमारे भगवान ऋषभ देव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन सब के जीवन को हमें अपने अंदर उतार करके उनके कुछ आदर्शों को लेना है। तो आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि हमारे लिए आदर्श हैं, दर्पण हैं कि जैसे उन्होंने अपने जीवन को समुन्नत बनाया, किसी ना किसी भव से अपने जीवन का उत्थान करना शुरू किया, तो हे भव्य प्राणी तू भी ऐसे ही अपने जीवन का उत्थान करते समय इन आदर्शों को देख। और यही है प्रथमानुयोग। आगे क्या होता है, बच्चे का रोना नहीं रुका माँ के इस संबोधन पर भी, तब माँ भी और तरीके से समझाने लगी सड़क पर ही, कल तूने अपने भैया को हंस हंस कर और चिढ़ाया था, उसके फल में ही गिरा आज तू इसी मार्ग पर आया था। करणानुयोग शुभ अशुभ कर्म के सुख दुख फल को रहा चला, पथ में चलते चलते माँ ने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। तब माँ ने क्या कहा, बच्चे का रोना जब नहीं रुका तो माँ उसे संबोधन करती है कि देख तू भैया के गिरने पर रोया था ना, और जब रोया और उसे हंसा तब तुझे कर्म बंद हुआ, किसी को कभी भी हंसना नहीं चाहिए, और ये कर्म बंद जो किया उसके फल में कल तू उस पे हंसा था तो कर्म का बंद हुआ और आज तू खुद गिर पड़ा। तो ऐसे कर्म के बंद की बात बताते हैं कि कैसे कैसे तुमने अपने कर्मों का बंद किया, कभी किसी की निंदा की, कभी बुराई की, कभी ईर्ष्या किया, तो कर्म के 8 कर्मों के 148 प्रकृतियों में कभी ज्ञानावरण कर्म का बंद किया, कभी दर्शनावरण कर्म का बंद किया, कभी राजा श्रेणिक जैसे मुनिराज के गले में सर्प डाला या उनके ऊपर उपसर्ग किया तो कर्म का बंद हो गया, नरक में जाना पड़ा। कभी देवायु का बंद किया, देवगति में गया। यानी कर्म बंद जो लोक अलोक का वर्णन करके कर्म बंद को बतलाने वाले शास्त्र हैं, वही हैं करणान योग। ऐसे करणान योग को बता रही है माँ कि तुझे उसका फल मिला है, तू भी इसी मार्ग पर आया था जिस मार्ग पर भैया आया। यहाँ भी कंकर पत्थर थे, उसको भी चोट लगी थी, तू भी कंकर पत्थर के रोड पर आया है, तेरे भी चोट लगी है। तो करणान योग इस प्रकार से शुभ अशुभ कर्म के फल जो सुख दुख रूप में मिलते हैं उनके बारे में बताता है। तो रास्ते में चलते चलते एक माँ के माध्यम से एक बच्चे को ऐसी शिक्षा मिलती है, और वही हम सब अज्ञानी बालकों के समान संसार के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति पथ पर चलने में जो रोड़े अटक रहे हैं, तो उसमें कर्म प्रकृतियों का चिंतन कराने वाला करणान योग बताया गया है। अब आगे देखिए, इतना कहते ही और चिढ़ गया मुन्ना, रो कर कहता है भैया पर मैंने हंसा कभी, वह भी तो मुझ पर हंसता है। माँ भी कुछ गुस्से में बोली, तुमने नीचे क्यों नहीं देखा, पथ चल के दे, पथ देख के चलने वाला मानव नहीं गिरता, हमने देखा चरणानुयोग पथ देख देख, चलने की सिखलाता है कला, पथ में चलते चलते माने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। अब देखो माँ कहती है बच्चे से कि जब वो रोता ही रहा, किसी तरह माना ही नहीं, चुप ही नहीं हुआ, तो माँ कहती है तो और ज्यादा रोने लगा। यानी कि जब भैया की बराबरी लगाएगी तो वो सोचता है, दो भाई आपस में होते हैं ना तो सोचते हैं माँ इसको ज्यादा मान रही है, तो जबरदस्ती करके उसकी गोद में घुसते हैं, माँ मैं इसे नहीं देख सकता, तू मुझे प्यार कर। तो जब माँ के मुख से अपने बड़े भाई की तारीफ सुनी तो वो और ज्यादा रोने लगा। तो जब माँ ने उसे कहा तो कहता है कि भैया तो भी तो मुझ पर हंसा था, मैं भी हंस दिया, वह भी मुझ पर हंसता तो मैं भी हंस दिया, क्योंकि बालपने में ज्ञान नहीं होता कि ऐसे ऐसे कर्मों का बंध होता है। ना हमने कर्म देखे ना बंध होते देखा, बस खाली उनका फल चखने के समय सुख और दुख का व्यक्ति अनुभव करने लगता है। हमें क्या पता कि हमने कब शुभ कर्म किए थे, कब अशुभ कर्म किए थे, कि हमें ठोकर लगी है। लेकिन चरणान योग कहता है जैसा कि माँ ने सिखाया, गुस्से में कहती है कि तूने नीचे क्यों नहीं देखा, भाई भैया ने नीचे नहीं देखा था, वो गिरा था, तूने उस पर हंसा था, तो अब तुझे देख करके चलना चाहिए था, तो तू नहीं गिरता, तो तुझे चोट नहीं लगती, और मुझे इतना समझाना भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार आचरण को सिखाती है माँ, और यही तो चरणानुयोग कहते हैं कि पथ देख देख करके चलो। रास्ता देख के चलेंगे तो हम भटकने नहीं पाएंगे, रास्ता देख के चलेंगे हमें ठोकर नहीं लगेगी, रास्ता देख करके चलेंगे हम समझो सदाचरणा पालन कर रहे हैं। पहले श्रावक के व्रतों का यानी अष्टमूल गुण पालन करेंगे, यानी रास्ता देख देख करके चलना मतलब हम कभी भक्ष भक्षण नहीं करेंगे, हम मद्यमांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। इन सब चीजों को बताने वाला चरणान योग है जो एक माँ के माध्यम से चलते हुए रास्ते में बच्चे को सिखाया जाता है। यही देख देख करके चलने की कला हमें चरणानुयोग के ग्रंथ इस स्वाध्याय से ज्ञात होता है। फिर आगे तीन अनुयोग हो गए। तो भी वही बालक चुप न हुआ, आंसू का झरना फूट पड़ा, रोना सिसकी में बदल गया, माँ के आंचल पर कूद पड़ा। माँ तो अमृता की मूरत है, उसने मुन्ने को उठा लिया, तू मेरा राजा बेटा है, नहीं चोट तुझे लगती भैया। द्रव्यानुयोग आत्मा को राजा बेटा कह जड़ से बदला, पथ में चलते चलते माने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। एक बार जब रोना शुरू हो जाता है, उसके प्रति जब सिंपैथी सहानुभूति कोई दिखाता है, तो उसका रोना और ज्यादा बढ़ जाता है। ये आप भी प्रैक्टिकल देखते होंगे। जैसे जैसे माँ समझाती है, ऐसे ऐसे बच्चा और ज्यादा तेज रोने लगता है, और अब सिसक सिसक करके, फफक करके वो रोने लगा। जब माँ देखती है कि अभी तक तो बच्चे का रोना रुका ही नहीं, और ज्यादा तेज रोने लगा, उसने उसे गोदी में उठा लिया। क्या भैया, और कुछ नहीं, अब ये माँ का आंचल माँ की गोदी चाहता है, और उसे चिपका करके उसे चुप करा दिया। और फिर क्या कहती है कि नहीं, राजा बेटा को चोट नहीं लगती। देखो, कई बार जब बच्चे को चोट लगती है, तो आप जमीन को थपथपा के मैं इसको मार दिया, और कहीं चींटी तो नहीं मर गई, कहीं तखत तो नहीं टूट गया। बच्चे की चोट को, उसके दर्द को कम करने के लिए माँ इस प्रकार से पॉइंट को, विषय को बदल देती है। तो उसने राजा बेटा कह करके और बच्चे को गोद में उठा लिया। तू मेरा राजा बेटा है, तुझे चोट नहीं लगी है, और जरा सा उसे सहलाती है, तभी बच्चा चुप हो जाता है। बहुत रोते, आज भी देखा, छोटा सा बच्चा आया, किसी तरह नहीं चुप हो रहा था। जैसे उसे माँ ने गोद में लिया, फिर पिता ने गोद में लिया, बस वो चुप हो गया, क्योंकि उस गोद को पहचानता है। और उसे एक थपकी लगती है, राजा बेटा कहा जाता है, चमकारा जाता है, पुचकारा जाता है, तो बच्चा चुप हो जाता है। इसी प्रकार से एक माँ ने उस रास्ते में चलते हुए ठोकर खाए हुए बच्चे को गोद में लेकर के और राजा बेटा कह करके उसे बताया कि तेरी आत्मा को चोट नहीं लगती, तेरे शरीर को चोट लगी है, यानी जड़ और चेतन का ध्यान कराया। यही कहता है द्रव्यान योग। समय सार क्या कहता है? ए आत्मन, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। तुस्मास भिन्नम शुद्ध परिचिदान भूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा ए तस्वलंबो नवरि न सुलोको विहत्तस। हे भव्यात्मन, काम भोग बंद की कथाएं तूने जन्म जन्म में सुनी है, भोगी है, यदि नहीं प्राप्त किया तो आत्म तत्व की एकत्व विभक्त की कथा, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, ये कथानक तूने नहीं जाना, और इसको ही जानना है जो दुर्लभ है संसार के अंदर। यही समय सार कहता है। और जब उसको प्रैक्टिकल किया जाता है, तो कभी बीमारी अवस्था में, कभी अंतराय की अवस्था में, कभी उपवास की अवस्था में, कभी परिचय और उपसर्ग सहने की अवस्था में, यदि व्यक्ति अपने पथ से विचलित नहीं हुआ, तो समझो उसके जीवन में अनुयोग सार्थक हो गए। वरना तो कहना बहुत कुछ है, लिख सकते हैं बहुत कुछ, कह सकते हैं बहुत कुछ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, परंतु संतों की वाणी को आत्मसात करना, विषम परिस्थिति आने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना, यही तो अनुयोग हमें ग्रंथ के रूप में, स्वाध्याय के रूप में सिखाते हैं। क्या हम उसे अपनी आत्मा पर अनुभव करके तो देखें? वरना जब किसी को चींटी काटी, इतने समय विचलित हो गया, और जब अपने चींटी काटी तो बार 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 उधर हाथ जाता है। तो क्या कि अपने ऊपर बिता करके करना चाहिए। और संत जन इसीलिए जानबूझ करके कभी उपवास करते हैं, कभी तपस्या करते हैं, कभी रस परित्याग करते हैं। यथा बलम, जैसे जब बनता है वैसे ही उपसर्ग परिसरों को बुला बुला करके सहन करने की आदत डालते हैं। अभी अष्टानिका पर्व आया, आप लोगों में से भी किसी ने कुछ नियम किए होंगे, नहीं तो कम से कम दिन में भोजन करने का, रात में भोजन नहीं करने का, कंदमूल भक्षण नहीं करने का, ये सब छोटे छोटे तो नियम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्या, ऐसा हमें अभ्यास बना रहे। तो चार अनुयोगों की बात आपने सुनी, अंत में उसका निष्कर्ष निकालता है, निकालना है अपने को निष्कर्ष। ऐसे ही सरस्वती माता जग को यह कला सिखाती है, चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी राह दिखाती है। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग स्वाध्याय करो, क्रम क्रम से फिर द्रव्यानुयोग में आत्मा का अध्याय पढ़ो। चंदनामती जग इसी तरह से सीखेगा अध्यात्म कला। पथ में चलते चलते माने सिखलाई कैसी ज्ञान कला। एक माँ की कहानी के माध्यम से हमने चार अनुयोग की बात सुनाई। बहुत पुराने समय में जब कभी शिविर लगा और पूज्य माता जी इन चीजों को पढ़ाती थी, तब मैंने काव्य के रूप में इस कथानक को लिखा कि इसी प्रकार से जिनवाणी माता, हमने संसार की माताएं शरीर को जन्म देने वाली माताओं को अनंत अनंत भवों में बनाया और उनके द्वारा कभी कुछ सीखा, कभी पथ भटक गए और संसार में भ्रमण करते रहे। लेकिन ये जिनवाणी माता सरस्वती माता संसार को ये कला सिखाती है। चारों अनुयोगों में जो जिनवाणी निबद्ध है, द्वाद सांग की वाणी है, उसकी कला को आपको सीखना है। तो प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, यानी पहले पुराण ग्रंथ पढ़ो, कहानियां पढ़ो। अगर आपको पुराण, बड़े बड़े पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं है या मन नहीं लगता है, तो आप छोटी छोटी किताबें पढ़ो। ज्ञानमती माता जी ने सारे ग्रंथों के मक्खन निकाल निकाल के छोटी उपन्यास की पुस्तकों में लिख दिया। आदि ब्रह्मा, पूरा आदि पुराण का सार छोटे से उपन्यास में लिख दिया। आदि ब्रह्मा, भरत का भारत, आप उसके माध्यम से पूरे चरित्र को आदिनाथ भगवान के, भरत बाहुबली के और सम्राट चक्रवर्ती भरत जीवन में सिद्ध परमेष्ठी कैसे बने, चक्रवर्ती कैसे बने, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें पहले पढ़ लो। कर्णान योग के त्रिलोक भास्कर को पढ़ लो। आप जैन ज्योतिर्लोक है, कर्णान योग के ग्रंथ हैं, गोमट सार जीव कांड कर्म कांड बड़े बड़े हैं, उनको छोटे में दे दिया। जीव कांड सार, कर्म कांड सार, जिनके अंदर केवल 150-150 गाथाओं में आप पूरी कर्म बंध की व्यवस्था को जान सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। चरणान योग में आपको बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने मूलाचार का खूब अच्छा हिंदी में अनुवाद कर दिया। पूरे देश के संत समूह में उनका स्वाध्याय किया जाता है। मूलाचार भाग एक, भाग दो, ऐसे रत्नकरण शाकाचार, इन सब ग्रंथों को मंगा लो, पढ़ लो। छह ढाला सुंदर सी है, प्रश्नोत्तर है, उनको मंगाओ, पढ़ो। और द्रव्यान योग, समय सार अगर पढ़ना ही है तो आप गुरु मुख से पढ़ो, ताकि समय सारी नहीं बन पाओ, समय सार के सार को समझ सके। ऐसा समय सार जिसकी अमृत चंद्र सूरी की टीका, आचार्य जयसेन स्वामी की संस्कृत टीका दोनों का हिंदी में अनुवाद करके ऐसा सुंदर समन्वय कर दिया है पूज्य माता ने। दो भागों में प्रकाशित हुए और अभी स्वामी जी ने उनको प्रकाशित करके पुनः सारे संघों के अंदर सब साधुओं के स्वाध्याय के लिए भेजा है। ज्ञान दान का महान पुण्य अर्जित किया है उन्होंने भी, और उसको दान करने वाले भी, श्रावक ने भी पुण्य का अर्जन कर लिया। ऐसा ज्ञान दान का पुण्य सदैव अर्जित करना ही चाहिए। तो इन चारों अनुयोगों के ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा तो स्वाध्याय कर सकते हो। अपना जीवन, मानव जीवन छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी अपने समय को सदुपयोग करने के लिए कभी कभी ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करो। एक नियम होना चाहिए कि चाहे हम 2 लाइन पढ़ेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन किसी एक ग्रंथ का बाकायदा स्वाध्याय करेंगे और उसे पूरा करेंगे। चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन वह स्वाध्याय कब आपके जीवन में सार्थक हो जाए और मानव जीवन को एकदम समुन्नत बना दे, कुछ पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे त्याग के मार्ग पर चल पड़ते हैं, मुनि बन जाते हैं, हारिकाएं बन जाती हैं। तो ये क्या है? ये चरणान योग के ग्रंथों के स्वाध्याय का फल है। और प्रथमान योग के रूप में जब गुरु समूह में, गुरु संघ में रहते हैं, तो उन्हें साक्षात पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आचरण में आ जाता है। अपने गुरु की क्रियाएं देखते देखते प्रथमान योग उनके जीवन के अंदर सार्थक हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से आप सब लोगों को हमने चारों अनुयोगों की सार्थकता के विषय में बताएं। अपना जो विषय चल रहा है वो आगे बराबर चलता रहेगा। और अभी हम चरणान योग पर ही चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कल या परसों तक ये चारों अनुयोगों की सार्थकता का चैप्टर पूरा हो जाए, और उसके बाद हम पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, ये 8वीं अध्याय है, और पूरे प्रमाण के साथ में आप जानेंगे कि अभी पंचम काल के 18,500 लगभग वर्ष बाकी हैं, तब तक बराबर मुनि धर्म चतुर्विध संघ परंपरा चलती चली जाएगी। उस चैप्टर को पढ़ करके आप उसका श्रद्धान करना, स्वाध्याय करना, और 30 नवंबर को हम आपकी लेंगे परीक्षा इन दोनों चैप्टर की। मैंने प्रश्न नंबर 124 से लेकर प्रश्न नंबर 169 तक, 169 तक, इनको आपको पढ़ना है, और उसके बाद 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र सामने आएगा। 30 नवंबर को इसी समय 3:30 बजे जूम चैनल के माध्यम से सबको प्रश्न पत्र मिलेगा, और उसको भर करके भेजिएगा। तो ऐसे इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का खूब स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन के अंदर खूब ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान एक अमृत है, और उस अमृत का पान करके आत्मा को अजर अमर बनाना है। यही स्वाध्याय का सार।